नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे में। श्रोताओं, हम अप्रैल के आखिरी दिनों में हैं और ये वक्त हमें बीते हुए दिनों पर विचार करने और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करने का मौका देता है। वक्त ये याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर होता है, इसलिए जिन कामों को आप पिछले कई दिनों से टालते आ रहे हैं उन्हें अब पूरा करने की योजना बनाइए। इसके साथ ही आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आज सवेरे की। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
नमस्कार सर फिरोजी, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीवन। इट्स अ ब्राइट न्यू डे विद पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉमिसेस, एंड वी बोथ आर थ्रिल्ड टू स्टार्ट दिस डे विद द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ म्यूजिक, न्यूज एंड पॉजिटिविटी इन आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम। दिस इज आज सवेरे, एंड वी विल शेयर द लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल। टुडे इट्स 28th ऑफ अप्रैल 2026, सो वी विल शेयर सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एज वेल।
जी,
वी आर बिगिनिंग विद द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi will be on a two-day visit to Uttar Pradesh beginning today. During the first leg of his visit in Varanasi, Mr. Modi will participate in Mahila Sammelan in the evening and also inaugurate and lay the foundation stone of various development projects worth around 6,350 crore rupees. The projects cover key sectors including rail, road, water, healthcare, tourism and urban infrastructure. Mr. Modi will flag off two new Amrit Bharat Express trains and lay the foundation stone of the Varanasi Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction 3rd and 4th railway line project, including the construction of a rail-cum-road bridge over the Ganga River. A report.
The Amrit Bharat Express trains, which are being launched, will connect Banaras Hadaspar in Pune and Ayodhya Lokmanya Tilak Terminus in Mumbai. These trains will provide affordable and modern travel options and enhance connectivity between Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra. The Banaras Pune service will facilitate easier access to Kashi Vishwanath Dham, while the Ayodhya Mumbai service will improve connectivity to the Sri Ram Mandir Tirth Kshetra, strengthening links between key religious destinations. With the launch of these two new services, the total number of operational Amrit Bharat Express trains will rise to 66. While the project related to the laying of 3rd and 4th railway line will improve access to Kashi Vishwanath Dham, National Highway 19 and strengthen rail connectivity with eastern Uttar Pradesh and Bihar. Anand Kumar for Akashwani News, Varanasi.
और शगुन, अपने श्रोताओं को बताते चलें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगोले, सिक्किम के मंत्री और कई सांसद भी भागीदारी करेंगे।
यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम की समावेशी विकास के लिए बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यटन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इन प्रमुख परियोजनाओं में नामसी जिले के यांगंग में आयुर्वेद हॉस्पिटल की आधारशिला रखना शामिल है। साथ ही यांगंग में ही सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस दिन को अधिक यादगार बनाने के लिए सिक्किम सरकार एकता के 1000 कदम थीम पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। सिक्किम की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाएगा। मायनक के साथ मैं मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन बिश्केक, किर्गिस्तान टुडे। ही अराइव्ड इन बिश्केक यस्टरडे। In a social media post, Mr. Singh said that during the meeting, he will highlight India's commitment towards global peace amidst the security challenges prevailing in the world. He underlined that he will also convey the country's consistent stance on zero tolerance for terrorism and extremism. The terrorism and extremism, the defense minister said that he looks forward to interacting bilaterally with the counterparts of other SCO member states and with the Indian community at Bishkek.
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे लद्दाख में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है। नवगठित जिले नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास हैं। इससे पहले लद्दाख में केवल 2 जिले, लेह और करगिल थे। इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ये निर्णय क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग और आकांक्षाओं को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
The Madhya Pradesh government has constituted a high-level committee to examine the feasibility of implementing the Uniform Civil Code in the state. An order in this regard was issued yesterday. The committee will be chaired by Justice Ranjana Prasad Desai, former judge of the Supreme Court. Among its responsibilities, the panel will examine models adopted by states such as Uttarakhand and Gujarat while taking into account the social, cultural and economic realities of Madhya Pradesh. The committee has been directed to submit its report along with the draft bill within 60 days.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अगले महीने की 4 से 10 तारीख तक राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 मनाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में अग्नि रोकथाम और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना होगा। इस वर्ष अग्नि सुरक्षा सप्ताह का विषय सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज अग्नि रोकथाम के लिए एकजुट रहेगा। अभियान का लक्ष्य स्वास्थ्य कर्मियों, विद्यार्थियों और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना, नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
So another update by the health ministry, this is in regard to heat wave conditions, and the Ministry of Health and Family Welfare has urged states and union territories to strengthen preparedness in view of heat wave conditions. Well, they are expected during the summer months. And in a letter written to the chief secretaries of states and union territories, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Punya Salila Srivastav, she said that above normal heat wave days are likely from April to June this year across parts of East, Central and Northwest India, as well as the Southeast Peninsula, based on forecasts by the India Meteorological Department. The ministry has directed states and union territories to operationalize dedicated heat stroke management units at all health facilities and ensure preparedness of ambulance services and disseminate early warnings.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मोज जल डमरू मध्य को खोलने के ईरान के नए प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मुलाकात की। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने बताया कि श्री ट्रंप ईरान के नए प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि श्री ट्रंप जल्द ही इस विषय पर बात करेंगे। इस बीच हॉर्मोज जल डमरू मध्य का खुलना अभी भी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है।
On to sports now. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Delhi Capitals by 9 wickets, and this was a one-sided encounter at Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. So, Delhi Capitals, they were invited to bat first and they were bundled out for just 75 runs in 16.3 overs. And for Royal Challengers Bengaluru, Josh Hazlewood bagged highest 4 wickets and Bhuvaneshwar Kumar also picked up 3 wickets. Now, in today's fixture, Punjab Kings will take on Rajasthan Royals at Mulanpur in New Chandigarh this evening, and the match will begin at 7:30 p.m.
और श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों का हाल। कहां से शुरू कर रहे हैं शगुन?
सर फिरोजी, वी विल बिगिन विद चेन्नई। द फर्स्ट अपडेट, एन ऐप हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एनालाइजिंग नीलगिरी तहर पॉपुलेशन डेटा। सो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज इन तमिलनाडु हैव लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल ऐप फॉर दिस ईयर्स सिंक्रोनाइज्ड नीलगिरी तहर सर्वे। State Forest Secretary Supriya Sahu said that for the first time authorities have deployed a dedicated mobile app. This is called Varudai, for real-time data collection, GPS-based tracking, standardized reporting, supported by a web-based platform enabling near real-time integration of field data. The app enhances accuracy and efficiency in analyzing the collected data across the Nilgiri Biosphere Reserve, which involves forest staff, volunteers, and researchers. Another update is from the Madras University, which is planning to launch online BCom BBA degree programs for this academic year. So Institute of Distance Education at the university, it is preparing e-sources. This includes video lectures, a studio for delivering live lectures for these online courses. This will be launched on a pilot basis. The university is offering more than 30 degree programs in the distance mode, This includes BCom, BBA, MBA, and they are among the most popular courses as a majority of students prefer these courses.
और अब रुख कर रहे हैं राजधानी दिल्ली का. दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज आयोजित होगा. इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा हो सकती है. विधानसभा सचिवालय के अनुसार सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि दिल्ली में जारी भीषण गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि श्रम विभाग के अंतर्गत नियोक्ताओं को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि श्रमिकों को दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच पर्याप्त विश्राम मिले. उनके लिए पीने के पानी, छाया और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग को राजधानी के सभी बस स्टॉप के पास जल काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली सरकार नगरवासियों के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ यात्रा का आयोजन कर रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल के अंतर्गत 30 अप्रैल को राजधानी के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से करीब 1300 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन गुजरात के सोमनाथ धाम के लिए रवाना होगी. श्रीमती रेखा गुप्ता ने इस आयोजन की घोषणा करते हुए कहा कि ये पावन पहल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हजार वर्षों की अखंड आस्था को समर्पित है और दिल्लीवासियों को अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है.
Sir Firozi, we'll now focus on Bengaluru. The first update, where in a suspected case of sabotage, two employees of a private digital services firm allegedly disabled around 240 CCTV cameras at M. Chinnaswamy Stadium, and this happened on April 24, the police said. So the accused reportedly entered the stadium using a deactivated access card and gained unauthorized access to the CCTV control room. They allegedly damaged NVR units and optical fiber connections, disrupting surveillance across entry gates and other key areas for about an hour. Following the incident, the surveillance systems they were restored and further investigation, it is underway. Another update from Bengaluru. The Integrated Intelligent Water and Sewerage Management Center, part of the Kauvery Stage 5 project supported by Japan International Cooperation Agency, this is ready for inauguration in the city. Bangalore Water Supply and Sewerage Board, the chairman, Dr. Ram Prasad Manohar, inspected the facility at Shimsha Bhavan in Jayanagar on Sunday. The centre, to be inaugurated soon by Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar, is among the largest in Asia and will monitor Bengaluru's drinking water and sewerage systems in real time. It will manage 775 MLD water supply, use AI to predict demand and detect leaks, track water quality and ensure sewage treatment compliance with National Green Tribunal standards.
और अब रुख कर रहे हैं शहर मुंबई की ओर. सामुदायिक पृष्ठभूमि पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मस्त महिला मंडली का विशेष प्रदर्शन आज मुंबई के प्रतिष्ठित रीगल सिनेमा में होगा. फिल्म निर्माताओं के जीवन, संघर्षों और वास्तविकताओं को दर्शाते इस फिल्म के प्रीमियर में लगभग 1200 दर्शक मौजूद रहेंगे. इस परियोजना की शुरुआत 2024 में हुई थी, जब मुंबई के श्रमिक वर्ग के इलाकों की 10 महिलाओं ने स्मार्टफोन आधारित फिल्म निर्माण पहल में भाग लिया और अपने दैनिक अनुभवों को फिल्माया. प्रतिभागी एनजीओ कोरो इंडिया से जुड़ी हैं और इसके राइट टू पी अभियान का हिस्सा है. ये डॉक्यूमेंट्री टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की प्रोफेसर और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता शिल्पा गुलाटी के नेतृत्व में 2 साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई है. महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई ने मुंबई के पवई और चांदीवली स्थित नगर निगम उद्यानों में मादक पदार्थों के सेवन और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है. उन्होंने पुलिस को इन क्षेत्रों में मिशन मोड अभियान चलाने का भी निर्देश दिया. श्री देसाई ने सुरक्षा गार्डो को संवेदनशील उद्यान क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से तैनात करने के निर्देश दिए हैं. सार्वजनिक उद्यानों के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रशासन जन सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने मुंबई मेट्रो लाइन 2B पर कुर्ला और तिलक नगर के बीच 41.5 मीटर लंबे स्टील स्पैन की स्थापना की है. व्यस्त सीएसएमटी पनवेल हार्बर लाइन के ऊपर ये ढांचा परियोजना के तीसरे चरण में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्य सीमित समय सीमा में किया गया, इससे लाइन के चालू होने के बाद पूरे शहर में कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
Focusing on Hyderabad now, the Telangana State Police Women's Safety Wing has initiated an innovative Bal Panchayat project to integrate children into local governance and enhance rural safety. And officially launched by Director General Shikha Goyal, this program provides a platform for children to discuss local issues and develop leadership skills, transforming them into active participants in community decision-making. Supported by the Youngistan and My Choices Foundations, the initiative aims to foster self-confidence and responsibility among the youth. So a pilot phase is currently underway across 6 villages, including Warangal, Medak, Vikarabad districts from April 27 to May 2nd. Members are transparently selected by village heads and school principals to ensure diverse representation.
और शगुन अब बात कर लेते हैं अपने आखिरी महानगर की।
जी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत कल 8 जिलों नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्वी बर्धमान, उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार 41,001 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 8,845 बूथ पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित हैं। और श्रोताओं, महानगरों की जानकारी के बाद अब आपको देंगे महानगरों के मौसम का हाल। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां बारिश के साथ आंधी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश और गरज की संभावना है, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और शगुन, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
अगेन सैफिरोजी, आई विल बिगिन विद चेन्नई।
जी।
It is expected to have partly cloudy sky and the temperatures hovering around minimum 27 degrees Celsius and maximum 36 degrees Celsius. Bengaluru is also expected to have partly cloudy sky today. The minimum temperature will be around 24 degrees Celsius. Maximum will be around 36 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. And the minimum temperature will be around 28 degrees Celsius. Maximum temperature will be around 40 degrees Celsius in Hyderabad.
और शगुन, मौसम की भी जानकारी ले ली तो अब रुख कर लेते हैं इतिहास के पन्नों का।
right.
और उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो आज के दिन का इतिहास बन गई। लेकिन उससे पहले शगुन, जान लेते हैं कि आज का दिन क्यों याद किया जाता है। श्रोताओं, आज विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा नामित ये दिन व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संबंधी चोटों और बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस दिवस का उद्देश्य कार्यस्थलों पर काम करने वालों की उचित सुरक्षा, उनके बेहतर स्वास्थ्य तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सुरक्षित कार्यस्थल केवल कर्मचारियों का अधिकार नहीं बल्कि उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और समाज तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए भी अनिवार्य है।
True that, and the World Day for Safety and Health at Work, the theme for this year, it focuses on good psychosocial working environments, which is a pathway to thriving workers and strong organization. As you said, it can boost the productivity.
बिल्कुल।
So the theme highlights preventing psychosocial risks, which are which can be stress, burnout and harassment. So this day focuses on preventing work-related accidents, diseases, raising awareness and also fostering a positive safety culture.
बिल्कुल शगुन, हमें याद रखना चाहिए कि स्वस्थ श्रमिक ही सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र की नींव होते हैं।
राइट सर फिरोजे।
और शगुन, कुछ और इतिहास की घटनाओं पर अब नजर डाल लेते हैं।
Yes, we'll take our listeners way back in time. In the year 1376, English Good Parliament began a meeting in London, and This until 10th of July. Then, this was the longest sitting English parliament. In 1788, Maryland becomes 7th state to ratify US Constitution.
और 1910 में आज ही के दिन इंग्लैंड में क्लोड ग्राहम वाइट नाम के एक पायलट ने पहली बार रात में प्लेन उड़ाया।
In 1916, बाल गंगाधर तिलक launched the Indian Home Rule League. A pivotal moment in the freedom struggle occurred when Lokmanya Tilak founded the Home Rule League in Belgaum.
और लगभग 16 साल बाद आज ही के दिन इंसानों के लिए येलो फीवर का टीका विकसित करने की घोषणा हुई। ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है और ये पीलिया जैसी होती है, इसे पित फीवर भी कहा जाता है।
Similar to jaundice, right?
जी।
In 1952, the Treaty of San Francisco came into effect, restoring Japanese sovereignty and ending its state of war with most of the allies of World War II.
और 1964 में आज ही के दिन जापान आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल हुआ। 2001 में आज ही के दिन अमेरिकी बिजनेसमैन डेनिस टीटो पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। इन्होंने 6 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के लिए करीब 2 करोड़ डॉलर की रकम अदा की। आज ही के दिन 2002 में बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन कर दिया गया।
We will now tell you about 2008. The Indian Space Research Organization created a new history by launching 10 satellites in one go with PSLV-C9.
और ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का क्षण रहा शगुन।
Exactly sir Firozi, very proud.
जी। और श्रोताओं अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे उन महान हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से रुखसत हुए। सबसे पहले याद कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म और रंगमंच अभिनेता सलीम गौस को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। चेन्नई में जन्मे और वहीं शिक्षित हुए सलीम गौस ने FTII पुणे से स्नातक किया और फिर सिनेमा घरों में उतर गए। वो एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी रहे। सलीम की अदाकारी का लोहा सारा बॉलीवुड मानता था। दक्षिण भारत में भी उन्होंने समान लोकप्रियता हासिल की। इन्होंने साल 1978 में फिल्म स्वर्ग नर्क के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद कुछ सबसे बड़े सितारों और बैनर के साथ भी ये कई फिल्मों में नजर आए। धारावाहिक भारत एक खोज और सरदारी बेगम तथा सोल्जर जैसी कई फिल्मों में अभिनय से इन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। दूरदर्शन पर आने वाला धारावाहिक भारत एक खोज इनमें सबसे अहम रहा, तो इस शो से इन्हें घर घर में पहचान मिली और हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस धारावाहिक का एक अंश।
ये भूमि हमारी है, यहाँ का हर पर्वत हर झरना इक्ष्वाकु वंश का है। यहाँ के हर जीव को हमारे विधान का पालन करना होगा। तुमसे युद्ध का प्रश्न ही कहां उठता है। मैं क्षत्रिय हूं, आखिर का मुझे पूरा अधिकार है।
Well, the voice expresses so many emotions. We were telling you about Salim Ghos. Listeners, today we are also remembering J. Willard Gibbs, the engineer and scientist who made fundamental theoretical contributions to physics, chemistry and mathematics. His contributions are well known. So his work on the applications of thermodynamics was instrumental in transforming physical chemistry into a rigorous deductive science. So Gibbs also worked on the application of Maxwell's equations to problems in physical optics. As a mathematician, he created modern vector calculus. And the independent British scientist Oliver Heaviside, he also carried out similar work during the same period and then described the Gibbs phenomenon in the theory of Fourier analysis. So he also explained the laws of thermodynamics as consequences of the statistical properties of ensembles of the possible states of a physical system composed of many particles. I was telling you about J. Willard Gibbs.
आज ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनायक कृष्ण गोकाक की भी पुण्यतिथि है, जिन्हें कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकारों में गिना जाता है। कवि, उपन्यासकार, समालोचक, नाटककार और निबंध लेखक के रूप में आधी से भी अधिक शताब्दी का उनका सक्रिय कार्यकाल 1934 में आरंभ हुआ, जब उनका प्रथम कविता संकलन कलोपासक प्रकाशित हुआ था। गोकाक की सर्वोत्कृष्ट रचना कन्नड़ भाषा में लिखी गई महाकाव्य भारत सिंधु रश्मि है, जो 20वीं सदी की सबसे लंबी कविताओं में से एक मानी जाती है।
Listeners, today we are also remembering Delta blues musician and songwriter Charlie Patton. So Charlie Patton's legend strides across the Delta like no other bluesman of his generation. In 1920s and 30s, Patton literally strode across the Delta and beyond the Delta blues I'm talking about. And he inspired other musicians with his incredible showmanship and powerful songs.
In this treason, I go home on a fight battle. God will die when hot spring. Dead battle. These women going crazy, never did it live. Will you kill a man?
Well, Patton's life was brief. He was nearly 40 years old when he made his first recording and then died just a few years later, but his music and legacy have endured for a century.
Don't take me long to get my baby, baby. You know I need my but men don't poison the lifetime. Dead bad baby.
1929 में आज ही के दिन जन्म हुआ था भानुमति अन्ना साहेब राजोपाध्याय का. भारतीय सिनेमा में मशहूर ड्रेस डिजाइनर के रूप में वो भानु अथैया के नाम से जानी जाती थी. भानु 5.5 दशक तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रही. इस दौरान उन्होंने ड्रेस डिजाइनिंग को नित नए आयाम दिए. इन्हें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक रिचर्ड एटनब्रो की फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रेस डिजाइनर का ऑस्कर पुरस्कार मिला था. ये पहली भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था.
राइट सर फिरोजी, भानु अथैया द लेजेंडरी इंडियन कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड पेंटर मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन अकेडमी अवार्ड. शी अर्न द ऑस्कर फॉर बेस्ट, एज यू टोल्ड आवर लिसनर्स, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर हर वर्क ऑन रिचर्ड एटनब्रोज 1982 बायोपिक गांधी. एंड वी हैव एन excerpt of an interview wherein she tells us about her Oscar win. Listen in.
I am no great speech maker, so I decided to make it very short and sweet. And what I said was, this is too good to believe. Thank you, Sir Richard Attenborough, for focusing world attention on India. So my performance also had to be of that equal caliber. There was no question of not doing your best. If you have done your homework and if you have given your best, I feel it would be seen, it would be recognized.
How great. Listeners, today we are also remembering T.V. Sundaram Iyengar, the industrialist and automobile pioneer, well, on his death anniversary today. So, the industrialist and automobile pioneer founded T.V. Sundaram Iyengar & Sons, a bus company which later diversified into automobile production and emerged as the parent company of the TVS Group, which is one of India's biggest business conglomerates. With his humble beginning as a lawyer, he grew into one of the most successful industrialists of all time. The flagship company of the group is TVS Motors, which is established by his son. So he laid the foundation stone for road transport industry in the erstwhile Madras Presidency through the state's first bus service.
और आज जन्मदिन है भारतीय अभिनेत्री सामांथा रोथ प्रभु का, जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती हैं. इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, दक्षिण 2 नंदी पुरस्कार और 1 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल है. रवि वर्मन ने सामंथा को तेलुगु फिल्म ये माया चिसावे से डेब्यू करने का मौका दिया और ये फिल्म हिट रही. इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु के लिए इन्हें नॉमिनेशन मिला. इन्होंने बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया.
कभी तो मानेगी ये. अरे 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 वो चुप रहती है पर हमें खबरें मिलती है तब क्या.
श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ दीजिए इजाजत सर फिरोजी और शगुन चोपड़ा को. कार्यक्रम आज सवेरे समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड.
वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड.
नमस्कार.